जी अब मेरे ख्याल में हो रही है। तो वल्लज़ीना आमनू, और जो ईमान लाए, वह हाजरू, और जिन्होंने हिजरत की, जब हिजरत ये फर्ज थी फतेह मक्का से पहले पहले अल्लाह के नबी के दौर में, अल्लाह के नबी के साथ जिन्होंने हिजरत की, वह जाहदू फी सबीलिल्लाह, और फिर जिहाद भी की। तो ईमान भी लाए, हिजरत भी की और जिहाद भी किया, और इसमें सबसे अहम बात हिजरत की है, कि जिन्होंने ये तकलीफ वाला अमर किया, घर छोड़ना, फैमिली छोड़ना, कुछ रिश्तेदार काफिर हैं, कुछ रिश्तेदार हिजरत नहीं करना चाह रहे, उन सबको छोड़ना, फिर कारोबार छोड़ना, और आगे पता भी नहीं है कि किस किस्म की जगह मिलेगी रहने के लिए, किस किस्म का कामकाज मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ी तकलीफ थी। तो अल्लाह ताला फरमाए, जिन्होंने ये वाली हिजरत की अल्लाह के नबी के कहने पे की, और ये जब हिजरत शरीयत ने फर्ज कर दिया तो हिजरत की, और दूसरे वो लोग वल्लजीना आवउ, और वो अंसार मदीना जिन्होंने नुसरत की, जिन्होंने हिजरत करके आने वालों की मदद की, उनको जगह दी, उनको रहने के लिए जगह दी, उनको खिलाया पिलाया। फरमाए ये दोनों है ना, उलाइक हुमुल मुमिनून, ये असल मोमिन है, और असल मोमिन होने पे उनको दो जबरदस्त तोहफे अल्लाह ने अता फरमाए, लहुम मग़फ़िरतुन, एक उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, और हदीस पाक के अल्फाज भी ऐसे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो काफिर होता है और इस्लाम ले आता है, इस्लाम लाने पे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और जो मुसलमान होता है और हिजरत करता है, ये हिजरत उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देने वाली चीज है। तो लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए मग़फ़िरत है, व रिज़्क़ुन करीम, और उनके लिए इज्जत वाली रोजी है। अल्लाह ताला एतमाद दिला रहे हैं, फिक्र ना करो, यहाँ पे माल छोड़ के जाओगे तो वहां पे भी तुमको रिज़्क़ खूब मिलेगा। अल्लाह के लिए जब हिजरत की है, अल्लाह के लिए एक ठिकाना छोड़कर दूसरे ठिकाने पे गए हो, तो फिक्र ना करना, माल में कमी नहीं आएगी। तो इस मुबारक आयत से तीन नुक्ते मिलते हैं, और पहला नुक्ता बहुत ही वाजे है कि जब इंसान अल्लाह के लिए तकलीफ उठाता है, अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, तो फिर वो अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है। कुरान पाक की एक आयत यहाँ इस आयत इसको याद आई कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लजीना जाहदू, जिसने हमारे लिए मुजाहिदा किया, हमारे लिए तकलीफ बर्दाश्त की, वल्लजीना जाहदू फीना, जिसने हमारे लिए तकलीफ बर्दाश्त की, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उसके लिए अपने तक पहुंचने के रास्ते को हमवार कर देते हैं। तो ये पक्की बात है, इंसान जब अल्लाह के लिए तकलीफ उठाता है तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाते हैं। ये जो रोजा हम रख रहे हैं, रमजान का मुबारक महीना है, ये हमने अपने लिए ये तकलीफ उठाई, गो कि इतनी बड़ी तकलीफ नहीं, सुबह से लेके शाम तक, और खास तौर पे इन दिनों में जब रोजा तकरीबन 12 साढ़े 12 घंटा है, तो इतनी तकलीफ भी नहीं, मगर बहरहाल अल्लाह के लिए फजर से मगरिब तक ये जो खाना पीना तर्क किया, इस पे अल्लाह ने मोहब्बत का ऐलान कर दिया। हदीस पाक में आता है कि रोजेदार के लिए आसमानों में परिंदे दुआएं करते हैं, और रोजेदार के लिए समंदर में मछलियां दुआएं करती हैं, और रोजेदार के लिए बिलों में चूटियां दुआएं करती हैं। तो अल्लाह ने इस रोजेदार को अपना वली बना दी। ये मामला तो वली के लिए होते हैं कि अल्लाह की मखलूक उनके लिए दुआएं कर रही है, अल्लाह की मखलूक औलियाए कराम से मोहब्बत करती है, मगर अल्लाह ने रोजेदार के लिए भी यही मामला कर दिया। तो जब इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उसको अपना खास कुर्ब अता फरमाते हैं। हदीस पाक में आता है कि तीन लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती, एक मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती, ایک سفر کرنے والے مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. اور تیسرا فرمایا روزے دار کی دعا جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی. اللہ, تو اللہ رب العزت نے روزے دار کو بڑی شان کیوں دی؟ اس نے مجاہدہ کیا. تو ایک اصول اس مبارک آیت سے, تین اصول, تین چیزیں ہیں, تین نقطے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. پہلا نقطہ یہ کہ اللہ رب العزت قربانی جو انسان دیتا ہے اس پر ایک بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں, اور یہ اصول ہے, دنیا میں بھی اصول ہے. جو بھی شخص ہمارے لیے قربانی دیتا ہے تو اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے. والدین اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو اولاد کو اللہ نے پابند کر دیا, اب تم نے اپنے والدین کے سامنے جھک کے رہنا ہے, انہوں نے تمہارے لیے قربانی دی ہے. تو اسی طرح اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے اللہ رب العزت اپنے آپ کو اس کے لیے پابند کر رہے ہیں کہ جی میں نے اس کو قرب اپنا دینا ہے. تو پہلا نقطہ اس مبارک آیت سے یہی کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے قربانی دے گا اس کی قربانی رائے گاں نہیں جائے گی. اللہ اس قربانی پہ اس کو اجر ضرور دیں گے. دوسری چیز جو اس مبارک آیت سے ہمیں جو نقطہ ملتا ہے, جو مشائخ نے بیان فرمایا, یہ جو قربانی دینا ہے نا, یہ جب آسان ہو جاتی ہے جب انسان محبت پیدا کرتا ہے. قربانی دینا اس کے لیے آسان ہے جس کے دل میں محبت ہے. آج دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں, آج دنیا کی شیطانی محبتیں, نفسانی محبتیں جو ہوتی ہیں, اس محبت کی وجہ سے انسان بڑی بڑی قربانیاں دے دیتا ہے. مجنوں کو لیلا سے محبت تھی, اس محبت کی وجہ سے مجنوں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار. اس محبت میں انسان پھر سب سب کچھ کرنے کے لیے تیار. کسی نے دیکھا کہ مجنوں کتے کے پیر کو چوم رہا تھا, لوگوں نے کہا کہ تیرا دماغ ہے, تیرا دماغ خراب ہے کہ کتے کے پیر کو چوم رہا ہے. تو مجنوں آگے سے کہتا ہے کیوں نہ چوموں اس کتے کے پیر کو کہ یہ میری لیلا کی گلی سے ہو کے آ رہا. تو جب محبت ہوتی ہے تو قربانی آسان. اور آج اللہ سے اس محبت میں کمی آ گئی ہے, اس لیے دین پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. علامہ اقبال نے فرمایا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. یہ جو عشق کی آگ, اللہ کی محبت کی آگ جو بجھ گئی ہے, اس لیے آج کا مسلمان راکھ کا ڈھیر ہے. راکھ کا ڈھیر سے مراد یہ کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اعمال سے خالی ہو گیا ہے, نہ اس سے راتوں کو اٹھا جاتا ہے, نہ قرآن پڑھا جاتا ہے, نہ گناہوں سے بچا جاتا ہے, نہ نگاہ کی حفاظت وہ کرتا ہے, نہ حلال رزق کی طرف وہ توجہ کرتا ہے, کیونکہ دل میں محبت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور جب محبت بڑھ جاتی ہے پھر انسان ہر بڑے سے بڑا عمل کرنے کے لیے تیار. ایک بزرگ تھے, محبت الہی میں سرشار اللہ والے تھے. ان کو بتایا گیا کہ جی جنت میں تو نماز پڑھنا نہیں ہوگا. یہ بات سن کے رونے لگے کہ جنت میں اگر نماز پڑھنا نہیں ہوگا تو پھر لذت کی چیز کیا ہوگی. اللہ اکبر, تو کیسی محبت اللہ کی دل میں تھی. تو جب محبت دل میں ہوتی ہے تو بڑا سے بڑا کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبک شیء یعمى ویسم, کہ جب کسی چیز کی محبت تجھے آ جاتی ہے نا پھر تو اندھا اور بہرا بن جاتا ہے, پھر عقل جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے تہجد پڑھنے میں بہت انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے, مگر میں کیا کروں صبح بہت سارے میرے کام ہوتے ہیں. تو فرض بھی نہیں, انسان اپنے آپ کو بہت ساری دلائل دے دیتا ہے, عقلی دلائل, کہ جی صبح بچوں کو دیکھنا بھی تو فرض ہے. کاروبار والا آدمی کہتا بھائی کام کاج کرنا بھی تو ضروری ہے, तो चलो मजबूरी है, ना भी पढ़े तहज्जुद तो क्या होगा। मगर जब मोहब्बत आ जाती है, इंसान कहता है जो भी हो जाए, वो जो अल्लाह के साथ मोहब्बत वाला वक्त है ना तहज्जुद, उसमें जरूर उठूंगा, जरूर उस मालिक को मनाऊंगा, जरूर उस वक्त उससे मोहब्बत की बातें करूंगा। तो मोहब्बत वाला बंदा जो है वो अजीब होता है। इसीलिए नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक ईमान नहीं लाया जब तक के लोग ये ना कह दें कि ये मजनून है। अल्लाह, क्यों? क्योंकि मोहब्बत करने वाला बंदा जो है वो अकल से काम नहीं लेता है, वो अपने जज्बे से काम लेता है। तो वो ऐसी चीजें करेगा जो आम लोग समझेंगे कि ये तो कोई समझदार नहीं है, बेवकूफ है, मजनून है, पागल है। तो नबी अलैहि सलाम फरमाए कि असल ईमान वाला वो है जिसको लोग कह उठेंगे ये पागल है। और आज ऐसा होता है, घर में नौजवान दाढ़ी रखता है, उसका वालिद भी उसको कह रहा होता है कि तुझे क्या हो गया है, तेरा दिमाग तो सही है। वालदा भी यही कह रही होती है, हर रिश्तेदार उसको समझा रहा होता है कि ये तूने क्या कर दिया। लोग दलाइल दे रहे होते हैं उसको, अकल को जिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तूने दाढ़ी रख ली, तेरे साथ शादी कौन करेगा। आजकल के जमाने में तो दाढ़ी वाले के साथ शादी कोई नहीं करता। अल्लाह अकबर, बच्ची बुरका पहनना शुरू कर देती है, उसकी माँ सबसे पहले उसको कहती है कि ये क्या तूने शुरू कर दिया है। तो ये इश्क जब आ जाता है तो इंसान ताने सुनने के लिए भी तैयार, ज्यादतियों के लिए भी तैयार। उसकी अकल काम करती नहीं है, उसकी आंख और उसकी समझ और उसका हर चीज बंद हो जाती है, उसका दिल बस जिंदा होता है। श्री नबी ने फरमाया कि जब किसी चीज की मोहब्बत होती है, हुब्बुका शैउन युहमा व युसिम, किसी चीज की मोहब्बत तुझे अंधा और बहरा कर देती है। तो किसी चीज की मोहब्बत जो है वो तुम्हें अंधा और बहरा कर देती है। ये पक्का उसूल है कि मोहब्बत जो है वो हर कुर्बानी को आसान कर देती है। तो तीन पॉइंट्स इस मुबारक आयत से निकलते हैं। और पहला पॉइंट ये कि इंसान जब कुर्बानी देता है तो अल्लाह का मुकर्रब हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि मोहब्बत जो है वो कुर्बानी देने को आसान कर देती है। तीसरा और अहम पॉइंट इस आयत से मुताल्लिक कि जब इंसान हिजरत करता है तो हिजरत में सबसे बड़ा मसला जो था वो रिस्क का था कि जी सब कुछ यहाँ छोड़ के जाएंगे तो वहां मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से घर मिलेगा, पहनेंगे क्या, तो क्या हम भीख मंगों की तरह जलील होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिजरत करने वालों से क्या वादा किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वरिज़्क़ुन करीम, कि जो लोग जिन्होंने हिजरत की, जो ईमान लाए, जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ जिहाद किया, लहुम मग़फ़िरतुन वरिज़्क़ुन करीम, मग़फ़िरत भी है मगर इज्जत वाला रिज्क होगा, यानी रिज्क तो होगा ही सही मगर इज्जत के साथ मिलेगा। और कितनी मिसालें हैं कि जो वहां पहुंचे तो रिज्क का मसला ही कोई नहीं था। जो अंसार थे, मदीना मुनव्वरा के मुसलमान थे, उन्होंने खुशी खुशी सबको अपना भाई बनाया। हदीस पाक में आता है कि कुछ ऐसे भी अंसार थे कि जिनकी बीवियां दो थी, और जो लोग अपनी बीवियों को छोड़ के वहां से आए उन्होंने ये भी ऑफर किया कि हम तलाक देते हैं, आप हमारी बीवी से शादी कर लो अगर तुम्हारे पास बीवी बच्चे नहीं है। यहां तक मदद करने के लिए तैयार हो गए। तो अल्लाह ने इज्जत दी, रिस्क भी दिया मगर इज्जत वाला रिस्क दिया, और फिर रिस्क में कमी नहीं की। कुछ ऐसे भी सहाबी थे कि जो जितने अमीर मक्का मुकरमा में थे, जब मदीना मुनव्वरा आए अल्लाह ने उनको और रिस्क दिया। और उसमें मशहूर मिसाल जो है हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह उन्हों की थी, अशराय मुबशरा के सहाबी हैं, मक्का मुकरमा के सबसे अमीर तरीन सहाबी थे, कोई काफिर भी उनसे ज्यादा अमीर नहीं, कोई मुसलमान भी उनसे ज्यादा अमीर नहीं था, मगर मदीना मुनव्वरा आए तो अल्लाह ने इतना रिस्क दिया, अल्लाह अकबर, कि जब वो इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो उनके जो विरासत का माल था उसमें 14,000 टन सोना था, अल्लाह, यानी आज के जमाने का जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है उससे भी ज्यादा अमीर आदमी, ये दुनिया का इस वक्त सबसे अमीर आदमी से भी ज्यादा अल्लाह ने माल उसको दिया हुआ था, अल्लाह हु अकबर। तो इज्जत वाला रिस्क भी दिया, कसरत वाला रिस्क भी दिया, अल्लाह ने रिस्क की कमी नहीं की, कि रिस्क में अल्लाह ने फैसला कर लिया कि जो हिजरत करेगा दीन के लिए, अल्लाह के लिए करेगा, अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत डालेंगे। और कई मरतबा इंसान अल्लाह को छोड़कर और माल के लिए हिजरत करता है, अल्लाह ताला उसके माल में से बरकत निकाल देते हैं। इसी तरह हजरत उस्मान रजी अल्लाह उन्हु भी अमीर तरीन लोगों में से थे मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वर आए तो भी अमीर तरीन थे, ऐसी ऐसी मिसालें उनकी मिलती हैं, पूरे पूरे शहर पे सदका फरमाया करते थे, जैसे कि पिछली क्लास में हमने बताया कि पूरे शहर में एक ही कुआं था और जो बहुत महंगा बिक रहा था, आपने वो कुआं खरीद कर मुसलमानों पे सदका कर दिया। जब कहत का वक्त आया, आपका तिजारत का सामान खाने पीने का लदा हुआ बहुत बड़ा, सारे ताजिर खरीदना चाह रहे थे आपका माल, आपने वो सारा माल पूरे शहर पे सदका कर दिया। इस मुबारक आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया कि जो अल्लाह के लिए कुर्बानियां देता है, 3 पॉइंट्स, कि जब इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है तब अल्लाह का मुकर्रब बनता है, दूसरा कि कुर्बानी देना आसान जब होती है जब दिल में मोहब्बत जाग जाती है और ये मोहब्बत अल्लाह वालों की सोहबत में जागती है, और तीसरा ये कि जो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देता है अल्लाह ताला उसको रिस्क के मामले में जलील नहीं फरमाते, उसको इज्जत वाला रिस्क देते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान की हर हर आयत पर अमल नसीब फरमाए। यहाँ आके आज का सबक मुकम्मल होता है, दुआ कर लीजिए। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.